रूह मुतलक श्री कृष्ण का बयान गीता उस्ताद शागिर्द का मुकालिमा है। ये अर्जुन ने कबूल किया कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शागिर्द हूं, आपका बंदा हूं, मुझे वो नसीहत दीजिए जिससे मैं आला मकाम को पहुंच जाऊं। अब उस मुर्शिदे आला के कदमों में गीता शुरू करने से पहले ये तहनियत यानी गुरु वंदना पेश की जा रही है।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय सद्गुरुदेवम् परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारम्
श्री प
हंस स्वामी अंतर्यामी है वर्णनामी
श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अतः प्रथमो अध्याय, पहला बाब। धृतराष्ट्र उवाच।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मैदाने दीन यानी धर्मक्षेत्र, मैदाने अमल यानी कुरुक्षेत्र में इकट्ठा जंग की ख्वाहिश वाली मेरी और पांडु की औलाद ने क्या किया? जहालत की तमसील धृतराष्ट्र और एहतियात की तमसील संजय। जहालत मन की असना में रहती है। जहालत से घिरा हुआ मन धृतराष्ट्र पैदाइशी नाबीना है, लेकिन तमसील एहतियात संजय के वसीले से वो देखता है, सुनता है, वो समझता है कि परवरदिगार ही हक है। फिर भी जब तक उससे पैदा तमसील फरिश्तगी दुर्योधन जिंदा है, इसकी नजर हमेशा कौरवों पर रहती है, उयूब पर रहती है। जिस्म एक मैदान है। जब दिल की दुनिया में रूहानी दौलत की इफरात होती है तो यह जिस्म मैदान दीन बन जाता है, और जब इसमें दुनियावी दौलत की इफरात होती है तो यह जिस्म मैदाने अमल बन जाता है। कुरु यानी करो, यह लफ्ज हुक्मी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुदरत से पैदा तीनों सिफात के जेर असर पाबंद होकर इंसान अमल पैदा होता है। वो एक लम्हा भी अमल किए बगैर नहीं रह सकता। सिफात उससे करा लेती हैं, नींद में भी काम बंद नहीं होता। वो भी तंदुरुस्त जिस्म की महज जरूरी खुराक है। तीनों सिफात इंसान को देवता से हशरातुल अर्ज तक अजसाम में ही बांधते हैं। जब तक कुदरत और कुदरत से पैदा सिफात जिंदा हैं, तब तक काम का सिलसिला यानी कुरु लगा रहेगा। लिहाजा पैदाइश और मौत के सिलसिले वाला मैदान यानी क्षेत्र, उयूब वाला मैदान मैदाने अमल है, और हकीकी दीने माबूद में दाखिला दिलाने वाले काबिले सवाब कसाइल यानी पांडवों का हलका मैदाने दीन है। माहिरीन आसारे कदीमा पंजाब में काशी और प्रयाग के दरमियान वो मुख्तलिफ जगहों पर कुरुक्षेत्र यानी मैदाने जंग की तहकीक में लगे हैं, लेकिन गीता के मुसन्निफ ने खुद बताया है कि जिस मैदान में ये जंग हुई वो कहां है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते। अर्जुन, ये जिस्म ही मैदान है, और जो इसे जानता है इसका किनारा पा लेता है वो आलिम मैदान है, यानी मैदान से बाखबर है। आगे इन्होंने मैदान यानी क्षेत्र की तफसील बताई, जिसमें 10 हवास, मन, अक्ल, गुरूर, पांचों उयूब और तीनों सिफात का बयान है। जिस्म ही मैदान है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाले खसाइल दो हैं, रूहानी दौलत और दुनियावी दौलत। पांडु की औलाद और धृतराष्ट्र की औलाद हमजात और गैर नस्ली खसाइल। तजुर्बेकार अजीम इंसान की पनाह में जाने पर इन दोनों खसाइल में जंग की शुरुआत होती है। ये मैदान और आलिम मैदान की जंग है, और यही हकीकी जंग है। आलमी जंगों से तारीख भरी पड़ी है, लेकिन उनमें फतेह हासिल करने वालों को भी दायमी फतेह नहीं मिलती। ये तो आपसी इंतकामात हैं, कुदरत का पूरी तरह खातिमा करके قدرت سے ماورا کی اقتدار کا دیدار کرنا اور اس میں داخل ہونا ہی حقیقی فتح ہے. یہی ایک ایسی فتح ہے جس کے پیچھے شکست نہیں ہے. یہی نجات ہے جس کے پیچھے آمد و رفت کی قید نہیں ہے. اس طرح جہالت سے گھرا من ضبط نفس کے ذریعے جانتا ہے کہ میدان اور عالمی میدان کی جنگ میں کیا ہوا. اب ضبط نفس کے عروج کے مطابق اسے صلاحیت آتی جائے گی. سنجے اواچا.
दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत.
उस वक्त शाह दुर्योधन ने सफारा पांडवों की फौज को देखकर द्रोणाचार्य के करीब जाकर यह बात कही. شرک کا برتاؤ ہی دروناچاری ہے. جب علم ہو جاتا ہے کہ ہم اعلی معبود سے جدا ہو گئے ہیں, یعنی یہی دوئی کا احساس ہے, وہاں اس کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. تبھی ہم مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں. دونوں خصائل کے بیچ یہی اولین مرشد ہے. اگرچہ بات کی مرشد جو کے مالک شری کرشن ہوں گے, جو جوگ کے حامل ہوں گے. شاہ دریودھن علامہ درون کے قریب جاتا ہے. تمثیل فریفتگی دریودھن. فریفتگی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے. شاہ ہے دریودھن. دور یعنی عیبدار, یودھن یعنی وہ دولت. روحانی دولت ہی دائمی دولت ہے. اس میں جو عیب پیدا کرتی ہے وہ ہے فریفتگی. یہی قدرت کی طرف کھینچتی ہے اور حقیقی علم کے لیے ترغیب بھی عطا کرتی ہے. فریفتگی ہے تبھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے, ورنہ سبھی مکمل ہی ہیں. لہذا سفارہ پانڈوؤں کی فوج کو دیکھ کر, یعنی ثواب سے رواں مزین ہمزاد خصائل کو منظم دیکھ کر, تمثیل فریفتگی دریودھن نے اول معلم درون کے قریب جا کر یہ گزارش کی.
پشیتام پانڈو پتراناں آچاریہ مہتیم چمو ویوڑھام دروپد پترین تو شیشین دھیمتا.
اے علامہ, اپنے سمجھدار شاگرد دروپد کے پسر دھرشٹ دمنا کے ذریعے سفارہ کھڑی ہوئی پانڈوؤں کی اولاد کی اس بہت بڑی فوج پر نظر ڈالیے. دائمی اٹل مقام میں عقیدت رکھنے والا اٹل من ہی دھرشٹ دمن ہے. یہی ثواب سے لبریز خصائل کا رہبر ہے. سادھن کٹھن نہ من کر ٹیکا, وسیلہ مشکل نہیں. من کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اب دیکھیں فوج کی وسعت.
اتر شورا مہیشواسا بھیمارجن سمایودھی یویدھانو ویراٹشچ دروپدشچ مہارتھہ.
اس فوج میں مہشواسا عظیم معبود میں مقام دلانے والے, احساس کی تمثیل بھیم, عشق کی تمثیل ارجن کی طرح تمام سرباز بہادر, جیسے پاکیزگی کی تمثیل ساتیکی, ویراٹ ہر جگہ خدائی نظارے کا عقیدہ, مرد میدان شاہ دروپد یعنی اٹل حالت, اور
دھرشٹ کیتوشچیکیتانہ کاشیراجشچ ویریوان پروجیت کنتی بھوجشچ शैव्यश्च नरपुंगवः।
धृष्ट केतु, गैर मुतजलजल फर्ज, चेकितान, जहां भी जाए वहां से जहन को खींचकर माबूद में साकिन करना। काशीराज, जिस्म की तमसील काशी में ही वो इख्तदार है। पुरुजित स्थूल, यानी आम तरह का कायम जिस्म। सूक्ष्म, यानी हवास के कारोबार से वाबस्ता लतीफ जिस्म। कारज, यानी हवास के मौजूआत से मुबर्रा लेकिन गुरूर से मुजयन, लतीफ से भी लतीफ जिस्म। अजसाम पर फतेह दिलाने वाला पुरुजित कुंती भोज, फर्ज से दुनिया पर फतेह, इंसानों में अफजल, शैव्य यानी सदाकत का सलूक।
युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
और जफाकश युधामन्यु, जंग के मुताबिक मन का अकीदा, उत्तमौजा नेक की मस्ती, सुभद्रा का वलद अभिमन्यु, जब नेक बुनियाद पड़ जाती है तो दिल खौफ से खाली हो जाता है। ऐसी मुबारक बुनियाद से पैदा बेखौफ मन, जहन की तमसील द्रौपदी की पांचों औलादें, मोहब्बत, हुस्न, फराख दिली, लताफत, इस्तेकामत, सब के सब मुजाहिदे आजम हैं। राह रियासत पर पूरी सलाहियत के साथ चलने की अहलियत है। इस तरह दुर्योधन ने पांडवों के तरफदारों के 15-20 नाम गिनाए जो रूहानी दौलत के बहुत खास हिस्से हैं। गैर नस्ली खसाइल का शाह होते हुए भी फरिश्तगी ही हमजात खसाइल को समझने के लिए मजबूर करती है। दुर्योधन अपनी पैरवी करते हुए मुख्तसर में कहता है, अगर कोई खारजी जंग होती तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, उयूब कम गिनाए गए क्योंकि उन पर फतेह पाना है। वो फानी हैं, महज 5-7 उयूब गिनाए गए जिनके असना में सारे दुनियावी खसाइल मौजूद हैं, जैसे
अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते।
अफजल ब्राह्मण यानी द्विजोत्तम, हमारे तरफदारों में जो जो खास सरदार हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी फौज के जो सिपे सालार हैं उनको बताता हूं। खारजी जंग में सिपे सालार आजम के लिए अफजल बरहम तकादुब बरहम नहीं है। दर हकीकत गीता में बातिन के दो खसाइल की जंग है, जिसमें शिर्क का बर्ताव ही द्रोण है। जब तक हम जरा सा भी माबूद से अलग हैं तब तक कुदरत मौजूद है, शिर्क बिना है। इस दुई पर फतेह पाने की तरगीब अव्वल मुर्शिद द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरा इल्म ही मुकम्मल इल्म हासिल करने के लिए तरगीब देता है। वो इबादत गाह नहीं, वहां बहादुरी को जाहिर करने वाला तकातुब होना चाहिए। गैर नस्ली खसाइल के सरदार कौन कौन हैं?
भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च।
एक तो खुद आप यानी दुई के बर्ताव की तमसील द्रोणाचार्य हैं, शक की तमसील दादा भीष्म हैं। शक इन उयूब का मजदर है, आखिर तक जिंदा रहता है, लिहाजा दादा पितामह है। पूरी फौज फना हो गई, ये जिंदा था। बिस्तरे तीर पर बेहोश था फिर भी जिंदा था। ये है शक की तमसील भीष्म। शक आखिर तक रहता है। इसी तरह गैर नस्ली अमल की तमसील कर्ण और जंग को जीतने वाले कृपाचार्य हैं। रियाजत की हालत में रियाजत कश के जरिए काम का बर्ताव भी कृपाचार्य हैं। माबूद मेहरबानियों के मखजन हैं और हुसूल के बाद आबिद की भी वही शक्ल है। लेकिन रियाजत के वक्त में जब तक हम अलग है माबूद अलग है। गैर नस्ली खसलत जिंदा है। फरिश्तगी की तमसील घिराव है। ऐसी हालत में रियाजत कश अगर रहम का बर्ताव करता है तो वह बर्बाद हो जाता है। यानी सीता ने रहम किया तो कुछ वक्त लंका में कफारा अदा करना पड़ा। विश्वामित्र रहम दिल हुए तो जलील होना पड़ा। जोग के कार बरदार वली पतंजलि भी यही कहते हैं। तीसरे बाप के 37वें श्लोक में कहा गया है, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध यह। उरूज के वक्त में कामयाबियां जाहिर होती हैं। वो दर हकीकत कामयाबियां ही हैं, लेकिन नजात हासिल करने के लिए उतनी ही बड़ी अड़चने हैं जितने ख्वाहिश, गुस्सा, लालच, फरेब वगैरह। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही फैसला है, छोरत ग्रंथ जानी खगर आया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रे रई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। कुदरत यानी माया तमाम दिक्कतें पैदा करती है, मालूमता अता करती है, यहां तक के कामिल बना देती है। ऐसी हालत वाला रियाजत कश बगल से गुजर भर जाए, मौत का हमकिनार मरीज भी जी उठेगा। वो भले ही सेहतमंद हो जाए लेकिन रियाजत कश अपना दीन मान बैठे तो बर्बाद हो जाएगा। एक मरीज की जगह पर हजारों मरीज घेर लेंगे। याद इलाही और गौर व फिक्र का सिलसिला टूट जाएगा और उधर बहकते बहकते दुनियादारी की इफरात हो जाएगी। अगर मंजिल दूर है और रियाजत कश रहम करता है तो रहम का तन्हा सलूक ही समितिन जय लाम उतना ही पूरी फौज को जीत लेगा। लिहाजा रियाजत कश को तकमील के आखिर तक इससे होशियार रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी हालत में यह गैर नस्ली खसलत का नाकाबिले तस्कीर जंगजू है। इसी तरह फरिश्तगी की तमसील अश्वत्थामा, बरअक्स तस्वुर की तमसील विकर्ण और गुमराही की तमसील नफ्स ही भुरिश्रवा है। ये सभी खारजी बहाव के सरदार हैं।
अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः।
और भी बहुत से जंगजू तमाम असलह से लैस मेरी खातिर जिंदगी की उम्मीद को छोड़कर जंग में डटे हैं। सभी मेरे लिए जान की कुर्बानी देने वाले हैं लेकिन उनका कोई काबिले तवज्जो पुख्ता वजूद नहीं है। अब कौन सी फौज किन ख्यालात की बिना पर महफूज है। इस पर कहते हैं,
अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम।
भीष्म की हिमायत याफ्ता फौज हर तरह से नाकाबिले फतेह है और भीम की हिफाजत याफ्ता इन लोगों की फौज पर फतेह हासिल करना सहल है। काफी और नाकाफी जैसे सहल लफ्ज का इस्तेमाल दुर्योधन के शक व शुबह को जाहिर करता है। लिहाजा देखना है कि भीष्म कौन सा इख्तदार है, जिस पर कौरव मुनहसिर हैं, और भीम कौन सी ताकत है जिस पर रूहानी दौलत सारे पांडव मुनहसिर हैं। दुर्योधन अपना निजाम देता है कि
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
सब मोर्चों पर अपनी जगह कायम रहते हुए आप सबके सब लोग भीष्म की हर तरफ से हिफाजत करें। अगर भीष्म जिंदा है तो हम नाकाबिले शिकस्त हैं, लिहाजा आप पांडवों से ना लड़कर सिर्फ भीष्म की ही हिफाजत करें। कैसा जंगजू है भीष्म जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उनकी हिफाजत का इंतजाम करना पड़ रहा है। यह कोई खारजी जंगजू नहीं, शक व शुबा ही भीष्म है। जब तक शक जिंदा है तब तक गैर नस्ली खसाइल यानी कौरव नाकाबिले फतेह हैं। नाकाबिले फतेह का यह मतलब नहीं जिसे फतेह ही ना किया जा सके, बल्कि नाकाबिले फतेह का मतलब असीरुल फतेह यानी दुर्जय है, जिसे मुश्किल से ही फतेह किया जा सकता है। महा अजय संसार रिपु जीती सके सो वीर। अगर शक खत्म हो जाए तो जहालत का वजूद खत्म हो जाए। फरीफ तगी वगैरह जो जुजुई तौर पर बाकी भी हैं जल्द ही खत्म हो जाएंगे। भीष्म की ख्वाहिश मौत थी, ख्वाहिश ही शक है। ख्वाहिश का खात्मा और शक का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने आसान तरीके से कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार ना पाया। जहां शक नहीं होता वो लामहदूद और गैर मरई है। इस जिस्म की पैदाइश की वजह ख्वाहिश है, ख्वाहिश ही फितरत यानी माया है, और ख्वाहिश ही दुनिया की पैदाइश की वजह है। सो कामयत तदैक्षत बहुस्या प्रजा ये इति। कबीर कहते हैं जो ख्वाहिशात से हर तरह खाली है तिनका पार ना पाया, वो लामहदूद लामुतनाही बेशुमार उनसुर में दाखला पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त कामो आत्म कामो नातस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव सना ब्रह्मा पियेती। जो ख्वाहिशात से आरी रूह में कायम बशक्ल रूह है उसमें कभी गिरावट नहीं आती, वो माबूद के साथ एक हो जाता है। शुरू में ख्वाहिशात लामुतनाही होती हैं और आखिरुल अम्र आला रूह के हुसूल की ख्वाहिश बाकी रहती है। जब यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है तब ख्वाहिश का भी इख्तिताम हो जाता है। अगर उससे भी बड़ी कोई चीज होती तो आप उसकी ख्वाहिश जरूर करते। जब उससे आगे कोई चीज है ही नहीं तो ख्वाहिश किसकी होगी। जब हासिल होने के काबिल कोई चीज ला हासिल ना रह जाए तो ख्वाहिश भी बुनियादी तौर पर खत्म हो जाती है, और ख्वाहिश के खत्म होते ही शक का हर तरह खात्मा हो जाता है। यही भीष्म की ख्वास्ता मौत है। इसी तरह भीष्म के जेर हिफाजत हम लोगों की फौज हर तरह से नाकाबिले फतेह है। जब तक शक है तभी तक जहालत का वजूद है, शक दूर हुआ तो जहालत भी खत्म हो जाती है। भीम की हिफाजत याफ्ता उन लोगों की फौज फतेह पाने में सहल है। खयाल की तमसील भीम भावे विद्यते देवा। खयाल में वो कुव्वत है कि गैर मरई जात मुतलक भी मरई हो जाती है। भाव वस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। श्री कृष्ण ने इसे अकीदत कहकर मुखातिब किया है। खयाल में वो अहलियत है कि परवरदिगार को भी अपने काबू में कर लेता है। ख्याल से ही पूरे के पूरे पाकीजा खसाइल का उरूज है, ये सवाब का मुहाफिज है तो इतना ताकतवर कि आला तरीन माबूद के हुसूल को मुमकिन बनाता है, लेकिन साथ ही साथ इतना नाजुक भी है कि आज नेक ख्याल हैं तो कल उसे बदख्याली में तब्दील होते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं महाराज बहुत नेक हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा है कि महाराज खीर खाते हैं, घास पात जे खाते हैं तिन्ह ही सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इलाह यानी ईस्ट में जरा सी भी कमी होने पर ख्याल मुतजलजिल हो जाता है, पाकीजा खसलत डामाडोल हो उठती है, माबूद से ताल्लुक टूट जाता है। लिहाजा भीम के जरिए हिफाजत याफ्ता उन लोगों की फौज फतेह हासिल करने में सहल है। वली पतंजलि का भी यही फैसला है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे वक्त तक मुसलसिल पूरी अकीदत के साथ की हुई रियाजत ही गैर मुतहर्रिक हो पाती है।
तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान।
इस तरह अपनी ताकत और कमजोरियों पर निगाह दौड़ाने के बाद सदाए नाखुश होगी। नाखुश की आवाज किरदारों के बहादुरी का ऐलान है कि फतेह हासिल करने पर कौन सा किरदार आपको क्या देगा। कौरवों में बुजुर्गवार जलाली भीष्म ने उस दुर्योधन के दिल में खुशी पैदा करते हुए ऊंची आवाज में शेर की गरज की तरह खौफनाक नाकूस बजाया। शेर दुनिया के खौफनाक पहलू की अलामत है। घनघोर जंगल की घनी खामोशी में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांपने लगेगा, गो के शेर आपसे मीलों दूर है। खौफ दुनिया में होता है, खुदा में नहीं, वो तो बिला खौफ इख्तदार है। शक की तमसील भीष्म अगर फतेह हासिल करता है तो दुनिया के जिस खौफनाक जंगल में आप हैं उससे भी ज्यादा खौफ की खोल में लपेट देगा। खौफ की एक परत और चढ़ जाएगी, खौफ का पर्दा और मोटा हो जाएगा, यह शक उसके अलावा और कुछ नहीं देगा। लिहाजा दुनिया से छुटकारा ही मंजिल मकसूद का रास्ता है। दुनिया में खसलत तो जंगली यानी भवाटवी है, घने अंधेरे का साया है, उसके आगे कौरवों का कोई ऐलान नहीं है। कौरवों की तरफ से कई बाजे एक साथ बजे, लेकिन कुल मिलाकर वो भी खौफ ही पैदा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हर ऐब कुछ ना कुछ खौफ तो पैदा करता ही है, लिहाजा उन्होंने भी ऐलान किया।
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्।
उसके बाद तमाम नाखूस नगाड़े ढोल और नरसंग वगैरह बाजे एक साथ ही बजे, उसकी आवाज भी बड़ी खौफनाक हुई। खौफ पैदा करने के अलावा कौरवों का कोई दूसरा ऐलान नहीं है। दुनियावी गैर नस्ली खसाइल कामयाब होने पर फरीफ्तगी की बंदिश और सख्त बना देती है। अब नेक खसाइल की तरफ से ऐलान हुआ, जिसमें पहला ऐलान जोग के मालिक श्री कृष्ण का है।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु।
इसके बाद सफेद घोड़ों वाले यानी जिसमें जरा सा भी कालापन ऐब नहीं है, सफेद सौलेह पाकीजगी की अलामत है। महती सियंदनी, अजीम रथ पर बैठे हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण और अर्जुन ने मावराई नाखूस बजाए। मावराई के माने हैं नादिर, आलम नासूत, आलम बका, आलम लाहूत, जहां तक पैदाइश और मौत का खौफ है। उन तमाम अवालिम से अलग मावराई, नेक अमल वाली हालत अता करने का ऐलान जोग के मालिक श्री कृष्ण का है। सोने चांदी लकड़ी का रथ नहीं, रथ मावराई, नाकूस मावराई, लिहाजा ऐलान भी मावराई ही है। अवालिम से दूर वाहिद खुदा है, सीधा उससे निस्बत बनाने का ऐलान आलम से दूर वाहिद इलाह है, सीधा उससे निस्बत बनाने का ऐलान है। वो कैसे उस मकाम पर पहुंचाएंगे?
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः।
ऋषिकेश, जो दिल की सभी बातें जानने वाले हैं, उन श्री कृष्ण ने पांच जन्य नाम का नाखूस बजाया। पांचों हवा से बातिनी के पांचों सिफात, लफ्ज, लम्स, शक्ल, लज्जत, महक के लुत्फ से अलग कर अपने अकीदतमंदों यानी मुकलिदों की जमात में ढालने का ऐलान किया। खौफनाक तरीके से बहकते हुए हवा समेट कर उन्हें अपने परवरदिगार की जमात में खड़ा कर देना दिल से मोहर्री के मुर्शद की देन है। श्री कृष्ण एक जोग के मालिक मुर्शदे कामिल थे। शिष्यस्ते हम, परवरदिगार मैं आपका मुकल्लिद हूं। कारजी मौजूआत को तर्क कर तसव्वुर में माबूद के अलावा दूसरा ना देखें, दूसरा ना सुनें, ना दूसरे को छुएं, ये मुर्शद के तजुर्बाती तहरीक पर मुनहसिर करता है। देवदत्तम धनंजयः, रूहानी दौलत को काबू करने वाला इश्क ही अर्जुन है। इलाह के मुताबिक उनसियत, जिसमें हिजर, तर्क दुनिया, अश्क रवा हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, एहतिजाज हो इलाह के अलावा किसी दूसरे तसव्वुर का जरा भी टकराव ना होने पाए, उसी को इश्क यानी अनुराग कहते हैं। अगर ये कामयाब होता है तो परवरदिगार में दाखिला दिलाने वाली रूहानी दौलत पर फतेह हासिल कर लेता है। इसी का दूसरा नाम दौलत पर फतेह हासिल करने वाला धनंजय भी है। एक दौलत तो खारजी दौलत है, जिससे जिस्म की जरूरियात पूरी होती हैं, रूह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उससे अलग हटकर हमेशा कायम रहने वाली रूहानी दौलत ही खुद की दौलत है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि माल और जर से लबरेज जमीन के मालिकाना से भी उनसुरे नौशाब का हुसूल नहीं हो सकता, उसका तरीका रूहानी दौलत है। दहशत पैदा करने वाले भीमसेन ने पौंड्र यानी मोहब्बत नाम का अजीम नाकूस बजाया। एहसास का मजदर और मकाम करने की जगह दिल है, लिहाजा इसका नाम वृकोदर यानी भीमसेन है। आपका एहसास और लगाव तिफल में होता है, लेकिन दर हकीकत वो लगाव आपके दिल में जो बच्चे में जाकर मुजस्सम होता है। यह ख्याल अताह और बेइंतहा ताकतवर है। उसने मोहब्बत यानी पौंड्र नाम का नाकूस बजाया। एहसास में ही वो मोहब्बत मुजमिर है, लिहाजा भीम ने पौंड्र यानी मोहब्बत नाम का अजीम नाकूस बजाया। एहसास बेहद ताकतवर है, लेकिन मोहब्बत के तहरीक के वसीले से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ।
कुंती के वलद शाह युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का नाकूस बजाया। फर्ज की तमसील कुंती और तमसील दीन युधिष्ठिर, दीन पर मुस्तकिल मिजाजी रहेगी तो अनंत विजय लामहदूद आला रूह में मकाम दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः, यानी जंग में जो साकिन है वही युधिष्ठिर है, मालिके कुल प्रकृति पुरुष, मैदान और आलम मैदान की जंग में मुस्तकिल रहता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ से भी मुतजलजिल नहीं होता। तो एक रोज जो लामहदूद है, जिसकी हद नहीं है, वो है उनसुरे आला रूहे मुतलक, उस पर फतेह दिला देता है। उसूल की तमसील नकुल ने सौघोष नाम का नाकूस बजाया। जैसे जैसे उसूल का उरूज होगा, ना मुबारक का खातिमा हो जाएगा, मुबारक का ऐलान होता जाएगा। सोहबते नेक की तमसील सहदेव ने मणि पुष्पक नामक नाकूस बजाया। मुफक्किरीन ने हर एक नफ्स को बेशकीमती जवाहर का नाम दिया है। हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए। एक सोहबत नेक तो वो है जो आप सोलह इंसान की जबान से सुनते हैं, लेकिन हकीकी सोहबत नेक बातिनी है। श्री कृष्ण के मुताबिक रूह ही हक है, अबदी है। जहन हर तरफ से सिमट कर रूह की सोहबत करने लगे, यही हकीकी नेक सोहबत है। ये नेक सोहबत गौर फिक्र और मुराकिबे के मश्क से सादिर होती है। जैसे जैसी हक की कुर्बत में याद यानी सूरत टिकती जाएगी, वैसे वैसे एक एक सांस पर काबू हासिल होता जाएगा। मन के साथ हवास पर काबू मिलता जाएगा। जिस दिन मुकम्मल कब्जा होगा, मंजिल हासिल हो जाएगी। बाजों की तरह जहन का रूह के सुर में सुर मिलाकर सोहबत करना ही सोहबत नेक है। बाहरी जौहर सख्त है, लेकिन सांस का जौहर फूल से भी ज्यादा नाजुक है। फूल तो खिलने या टूटने पर मुरझाता है, लेकिन आप अगली सांस तक जिंदा रहने का कौल नहीं दे सकते। लेकिन सोहबत नेक कामयाब होने पर हर एक नस पर काबू दिलाकर मकसद आला को हासिल करा देती है। उसके आगे पांडवों का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन हर एक वसीला कुछ न कुछ पाकीजगी की राह में दूरी तय कराता है। आगे फरमाते हैं,
काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।
जिस्म की तमसील काशी, इंसान जब हर जानिब से मन के साथ हवास को समेटकर जिस्म में ही मरकूज करता है, तो परमेश्वास आला माबूद में मकाम करने का मुस्तहिक हो जाता है। आला माबूद में मकाम दिलाने में अहल जिस्म ही काशी है। जिस्म ही आला माबूद का मकाम है परमेशवास। परमेशवास के माने आला कमान वाला नहीं, बल्कि आला माबूद मकाम यानी परम ईशवास, यानी आला माबूद का मकाम है। चोटी और जुन्नार का तर्क ही शिखंडी है। आजकल लोग सर के बाल मुंडवा लेते हैं, और सूत्र के नाम पर गले का जुन्नार जनेव हटा देते हैं, आग जलाना छोड़ देते हैं। हो गया उनके तर्क दुनिया नहीं, दर हकीकत चोटी मकसद की अलामत है जिसे आपको हासिल करना है। और जुन्नार है तासुरात, संस्कारों की अलामत। जब तक आगे रूह मुतलक का हुसूल बाकी है, पीछे तासुरात का आगाज लगा हुआ है, तब तक ईसार कैसा, तर्क दुनिया कैसी। अभी तो चलने वाले राहगीर हैं, जब मंजिल मकसूद इलाह हासिल हो जाए, पीछे लगे हुए तसव्वुरात की डोर कट जाए, ऐसी हालत में शक हर तरह से खत्म हो जाता है। लिहाजा शिकंडी ही शक की तमसील भीष्म का खात्मा करता है। शिकंडी राह गौर फिक्र की खुसूसी सलाहियत है, मर्द मैदान है। दृष्ट दुम्न गैर मुतहर्रिक और मुस्तकिल मिजाज और विराट, हर जगह अजीमुशान माबूद का जलवा देखने की सलाहियत वगैरह रूहानी दौलत के खास खसूसियात हैं। सालेह मिजाजी सात्विकता ही सात्यकी है। हक के गौर फिक्र की खसलत यानी पाकीजगी अगर कायम है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस जंग में कभी शिकस्त नहीं होने देगी।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्।
अटल मकाम देने वाले द्रुपद और तसव्वुर की तमसील द्रौपदी की पांचों औलादें, फराख दिली, शफकत, मलाहत, लताफत, मुस्तकिल मिजाजी, रियाजत में बेहद मददगार मुजाहिदीन आजम हैं, और लंबी बाजुओं वाला अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग नाकूस बजाए। बाजू हल्का कार की अलामत है, जब मन खौफ से खाली हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर दूर तक हो जाती है। शाह इन सब ने अलग अलग नाखूस बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, उन सब की तामील जरूरी है, लिहाजा इनके नाम गिनाए। इसके अलावा कुछ दूरी ऐसी भी है जो दिलो दिमाग से हटकर है, परवरदिगार ही बातिन में मौजूद रहकर तय कराते हैं। इधर नजर बनकर रूह में खड़े हो जाते हैं और सामने खुद खड़ा होकर अपना तारुफ करा लेते हैं।
सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
उस खौफजदा आवाज ने जमीन और आसमान को भी आवाज से भरते हुए धृतराष्ट्र की औलाद के दिलों को छलनी कर दिया। फौज तो पांडवों की तरफ भी थी, लेकिन दिल छलनी हुए धृतराष्ट्र की औलाद के। दर हकीकत पांच जन्य यानी एक तरह का नाकूस, रूहानी ताकत पर इख्तियार, लामहदूद पर फतेह, नामुबारक का खातिमा और मुबारक का ऐलान तसलसल के साथ होने लगे तो मैदान अमल, दुनियावी दौलत, खारजी खसाइल का दिल छलनी हो जाएगा। उनकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पूरे तौर से कामयाबी हासिल होने पर फरीफ्ता खसाइल पूरी तौर से खामोश हो जाते हैं।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत।
जब्ते नफ्स की तमसील, संजय ने लाइल्मी से घिरे हुए मन धृतिराष्ट्र को समझाया कि अय शाह, उसके बाद कपिध्वज, बैराग की तमसील हनुमान, बैराग ही परचम है जिसका परचम कौम का निशान माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं परचम शोख था, लिहाजा कपिध्वज परचमे बंदर कहा गया, लेकिन नहीं, यहां कपि आम बंदर नहीं, खुद हनुमान थे जिन्होंने इज्जत व जिल्लत का खात्मा किया था। सममान निरादर आदर ही, दुनिया की देखी सुनी चीजों से, उनके मौजूआत से उनसियत का तर्क कर देना ही बैराग है। लिहाजा बैराग ही जिस्म का परचम है। उस अर्जुन ने बाकायदा धृतराष्ट्र की औलाद को खड़े देखकर असलहा चलाने की तैयारी के वक्त कमान उठाकर ऋषिकेशम, जो दिल का सब कुछ जानते हैं, इन जोग के मालिक श्री कृष्ण से यह बात कही। ऐ अछूत मुस्तकिल मिजाज इंसान, मेरे रथ को दोनों फौजों के बीच खड़ा कीजिए। यहां रथ बान को दिया गया हुक्म नहीं, मतलूब मुर्शिद से की गई गुजारिश है, किस लिए खड़ा करें?
यावदेतान् निरीक्षेहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
जब तक मैं इन जमे हुए जंग की ख्वाहिशात वालों को अच्छी तरह देख न लूं, इस जंग के कारोबार में मुझे किन किन के साथ जंग करना लाजमी है, इस जंग के कारोबार में मुझे किन किन के साथ जंग करनी है।
योत्स्यमानान वेक्षेहम् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
बद अक्ल दुर्योधन का जंग में भला चाहने वाले जो जो शाह हजरात इस फौज में आए हैं, उन जंग करने वालों को मैं देखूंगा, लिहाजा खड़ा करें। फरीफ्तगी की तमसील दुर्योधन, फरीफ्ता खसाइल का भला चाहने वाले जो जो शाह हजरात इस जंग में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच।
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान कुरु नीति।
संजय बोला, नींद पर काबू रखने वाले अर्जुन के जरिए इस तरह कहे जाने पर दिल की बातों को जानने वाले श्री कृष्ण ने दोनों तरफ की फौजों के दरमियान भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम, जिस्म की तमसील जमीन पर कब्जा जमाए हुए तमाम शाहों के दरमियान अजीम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन जमा हुए कौरवों को देख, यहां अफजल रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। दुनिया में अफजल की तशरीह फानी के मुतालिक मुताबिकत और मुखालिफत से की जाती है। यह तशरीह नामुकम्मल है। जो हमारी रूह हमारी शक्ल का हमेशा साथ दे वही अफजल है, जिसके पीछे अनुत्तम बदतरी ना हो।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः स्त्री नथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
उसके बाद बेखता निशांची फानी जिस्म को रथ बनाने वाले पार्थ अर्जुन ने उन दोनों फौजों में मौजूद अपने वालिद के भाइयों को, मुअल्लिमों को, मामाओं को, भाइयों को, अजदाद को, बेटों को, पोतों को, दोस्तों को, ससुरों को और खैर ख्वाह लोगों को देखा। दोनों तरफ की फौजों में अर्जुन को सिर्फ अपना खानदान, मामा का खानदान, ससुर का खानदान, दोस्त अहबाब और पीर मुर्शिद दिखाई पड़े। महाभारत के वक्त के शुमार के मुताबिक 18 औक्षोहिणी तकरीबन 40 लाख के बराबर होता है, लेकिन मौजूदा शुमार के मुताबिक 18 औक्षोहिणी तकरीबन 6.5 अरब के होता है, जो आज की दुनिया के आबादी के बराबर है। महज इतनी तादाद के लिए कभी कभी दुनियावी सतह पर खाने की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इंसानों की इतनी तादाद में महज अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का खानदान था। क्या इतना बड़ा भी किसी का खानदान होता है? हरगिज नहीं। ये दिल की दुनिया की अकासी है।
तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत।
इस तरह खड़े हुए उन तमाम दोस्तों व अहबाबों को देखकर बेहद दर्द मंदी से घिरा हुआ वो कुंती का वलद अर्जुन गमजदा होकर बोला। अर्जुन गम करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना ही खानदान है, लिहाजा बोला अर्जुन उवाच।
दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
अय श्री कृष्ण, जंग के ख्वाहिशमंद खड़े हुए इन अपने लोगों की जमात को देखकर मेरे जिस्म के हिस्से ढीले हुए जाते हैं, मुंह खुश्क होता जा रहा है और मेरा जिस्म लर्जा बरिंदाम कुन हो रहा है। इतना ही नहीं,
गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
हाथ से गांडीव अर्जुन के कमान का नाम गिरता है, जिल्द भी जल रही है, अर्जुन को बुखार सा हो आया। गमगीन हो उठा कि यह कैसी जंग है जिसमें अपने ही लोग खड़े हैं। अर्जुन को शक हो गया, वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी खुद को खासिर पा रहा हूं, अब आगे देखने की ताकत नहीं है।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
केशव, इस जंग के आसार भी बरखिलाफ ही देखता हूं। जंग में अपने खानदान को मारकर कोई खास बेहतरी भी मुझे नजर नहीं आ रही है। खानदान को मारने से भलाई कैसे होगी?
नकांक्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा।
मुसल्लम खानदान जंग के मुहाने पर है। उन्हें जंग में मारकर फतेह से मिलने वाला इख्तदार और इख्तदार से मिलने वाली खुशी अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है, कृष्ण मैं फतेह नहीं चाहता, इख्तदार और उससे मिलने वाली खुशी भी नहीं चाहता। गोविंद हमें इख्तदार या ऐशो इशरत कौह जिंदगी से भी क्या वास्ता है, क्यों? इस पर कहता है,
येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च।
हमें जिनके लिए इख्तदार का ऐशो इशरत और ख्वाहिशात की तलब है, वही खानदान जिंदगी की उम्मीद छोड़कर मैदाने जंग में खड़े हैं। हमें इख्तदार की ख्वाहिश थी तो खानदान को लेकर ऐश और इशरत खुशी और दौलत की तिश्नगी थी तो अपनों और खानदान के साथ उनका लुत्फ उठाने की थी। लेकिन जब सब के सब जिंदगी की उम्मीद छोड़कर खड़े हैं तो मुझे सुख इख्तदार या ऐश नहीं चाहिए। इन्हीं लोगों के साथ रहकर इन सारी चीजों की कीमत थी। इनसे जुदा होने पर हमें इनकी जरूरत नहीं है। जब तक खानदान रहता है तभी तक ये ख्वाहिशात भी रहती हैं। झोंपड़ी में रहने वाला भी अपने खानदान दोस्त अहबाब को मारकर पूरी दुनिया की सल्तनत को भी कबूल नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें ऐश पसंद थे, फतेह पसंद थी, जिनके लिए थी, जब वो ही नहीं रहेंगे तो ऐशो इशरत का क्या मतलब? इस जंग में मारना किसे है?
आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा।
इस जंग में अल्लामा, ताऊ, चचा, बेटे और इसी तरह दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सारे नाते रिश्तेदार लोग ही हैं।
एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते।
मधुसूदन, उनके जरिए मुझे हलाक किए जाने पर भी क्या तीनों अवालम के इख्तदार के लिए भी मैं इन सबको हलाक नहीं करना चाहता? फिर इस जमीन के लिए कहना ही क्या है? 18 औक्षहीनी फौज में अर्जुन को अपना खानदान ही दिखाई पड़ा। अपने लोगों की इतनी बड़ी जमात दर हकीकत है क्या? दर हकीकत इश्क ही अर्जुन है। याद इलाही की इब्तदाई दौर में हर एक आशिक के सामने यही मसला रहता है। सभी चाहते हैं कि हम याद विर्द करें, उस आला हकीकत के मकाम पर पहुंच जाएं लेकिन किसी तजर्बेकार मुर्शिद की सरपरस्ती में कोई आशिक मैदान और मैदान के आलिम की जंग को समझता है कि हमें किन से जंग करनी है, तो वो मायूस हो जाता है। वो चाहता है कि हमारे पितर का खानदान, ससुराल का खानदान, मामा का खानदान, दोस्त अहबाब और मुर्शिद व पीर साथ रहें, सभी खुशहाल रहें, और इन सब की खिदमत करते हुए हम उस रूह मुतलक को भी हासिल कर लें। लेकिन जब वो समझता है कि राह इबादत में आगे बढ़ने के लिए खानदान छोड़ना होगा, इन ताल्लुकात की गिरफ्त से बाहर निकलना होगा, तो वो बेसब्र हो उठता है। काबिल एहतराम महाराज जी फरमाया करते थे, मरना और सूफी होना बराबर है। सूफी के लिए दुनिया में कोई जिंदा है भी, लेकिन घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। अगर कोई है तो उनसियत है। फरीफ्तगी खत्म कहां हुई? जहां तक उनसियत है, उसका पूरी तरह से ईसार उस उनसियत के वजूद के खत्म होने पर ही उसकी कामयाबी है। इन ताल्लुकात की वसत ही तो दुनिया है, वरना दुनिया में हमारा क्या है? तुलसी दास कह चिद विलास जग, बूझत बूझत बुझई। मन की वसत ही दुनिया है। जोग के मालिक श्री कृष्ण ने दिल की वसत को ही दुनिया कहकर मुखातिब किया। जिसने इसके असर को रोक लिया, उसने मखलूकात आलम पर ही फतेह हासिल कर ली। गीता के पांचवें अध्याय में 19वें श्लोक में इहैव तैर्जित सर्गो ये शाम साम में स्थितम मनः, सिर्फ अर्जुन बेकरार था, ऐसी बात नहीं है। इश्क सबके दिल में है, हर एक आशिक बेकरार होता है, उसे अजीज लोग याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि याद इलाही से कुछ फायदा होगा तो ये सब खुशहाल होंगे, इनके साथ रहकर उसका लुत्फ उठाएंगे। जब ये साथ ही नहीं रहे तो ऐशो इशरत को क्या करेंगे? अर्जुन की नजर इख्तदार के ऐश तक ही महदूद थी। वो तीनों जहान के मालिक के इख्तदार को ही ऐशो इशरत की आखिरी हद समझता था। इसके आगे भी कोई हकीकत है, इसका इल्म अभी अर्जुन को नहीं है।
निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः।
जनार्दन, धृतराष्ट्र के औलाद को मारकर हमें क्या खुशी होगी? जहां धृतराष्ट्र यानी धृष्टता का राष्ट्र है, गुस्ताखी का इख्तदार है, उससे पैदा फरिश्तगी की तमसील दुर्योधन वगैरह को मारकर भी हमें क्या खुशी होगी? इन जालिमों को मारकर हमें गुनाहगार ही तो होना पड़ेगा, जो जिंदगी बसर करने के मामूली फायदे के लिए बद अखलाकी को कबूल करता है वो जालिम कहलाता है। लेकिन हकीकत में इससे बड़ा जालिम वो है जो रूह के रास्ते में रुकावट डालता है, खुद शनासी में खलल डालने वाले ख्वाहिश, गुस्सा, लालच, फरीफ्तगी वगैरह का गिरोह ही जालिम है।
तस्मान्नार्हावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
लिहाजा ऐ माधव, अपने अहबाब धृतराष्ट्र की औलाद को मारने के काबिल हम नहीं हैं। अपने अहबाब कैसे? वो तो दुश्मन न थे, तो दर हकीकत जिस्मानी रिश्ते नासमझी की बिना पर पैदा होते हैं। ये मामा है, ससुराल है, दोस्त अहबाब की जमात है, ये सब नासमझी ही तो है। जब जिस्म ही फानी है तब इसके रिश्ते कहां रहेंगे, फरिश्तगी है तभी तक दोस्त अहबाब हैं, हमारा खानदान है, हमारी दुनिया है, फरिश्तगी नहीं तो कुछ भी नहीं। इस वास्ते वो दुश्मन भी अर्जुन को अपने ही लोग दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने खानदान को मारकर हम कैसे खुशहाल होंगे, अगर ना समझी और फरिश्तगी ना रहे तो खानदान का वजूद ना हो। ये ला इल्मी इल्म की मुहर्रिक भी है। भतुरहरि तुलसी वगैरह तमाम मोजिज लोगों को बैराग की तरगीब बेगमों से मिली, तो कोई सौतेली मां की बद अखलाकी से परेशान होकर राह तर्क दुनिया बैराग पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।
गो के लालच से बदउनवान जहन हुए ये लोग खानदान को तबाह करने वाली बुराइयों और दोस्तों से दुश्मनी के गुनाह को नजरअंदाज कर देते हैं। ये उनकी खामी है। फिर भी
कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
जनार्दन, खानदान की तबाही से होने वाली बुराइयों को जानने वाले हम लोगों को इस गुनाह से अलग होने के लिए क्यों नहीं गौर करना चाहिए? मैं ही गुनाह करता हूं, ऐसी बात नहीं आप भी गलती करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी इल्जाम लगाया, अभी वो समझ में अपने को श्री कृष्ण से कमतर नहीं मानता। हर एक नया रियाजत कश मुर्शिद के पनाह में जाने पर उसी तरह की दलील देता है कि अपने को समझ में कमतर नहीं मानता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ही ना समझें लेकिन हम आप तो समझदार हैं। खानदान की तबाही की बुराइयों पर हमें गौर करना चाहिए। खानदान की तबाही में बुराई क्या है?
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत।
खानदान का खात्मा होने से कदीमी खानदानी फर्ज खत्म हो जाते हैं। अर्जुन खानदानी फर्ज खानदानी तरबियत को ही अबदी दीन समझ रहा था। फर्ज के खात्मे के बाद गुनाह का दबाव पूरे खानदान पर पड़ता है।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आर्ष्णीय जायते वर्ण संकरः।
अय कृष्ण, गुनाहों के ज्यादा बढ़ जाने पर खानदान की औरतें नाकिस हो जाती हैं। वाचनेर्य, औरतों के नाकिस होने पर इब्नुल गैब पैदा होता है। अर्जुन का मानना था खानदान की औरतों के नाकिस होने से दोगला पैदा होता है, लेकिन श्री कृष्ण ने इस बात की तर्दीद करते हुए आगे बताया कि मैं खुद या आला मकाम पर फायज अजीम इंसान अगर रियाजत के तसलसल में शुबा पैदा कर दें तब दोगला पैदा होता है। दोगले के उयूब पर अर्जुन रोशनी डालता है।
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।
دوغلا خاندان کو برباد کرنے والوں اور خاندان کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابن الغیب پیدا ہونے سے پنڈ دان کا رواج ختم ہو جاتا ہے، ایسے گرے خاندانوں کے آبا و اجداد بھی گر جاتے ہیں۔ پنڈ دان مرنے کے بعد 12 دن تک شراد نام سے چاول، دودھ، گھی، تل، شہد وغیرہ ملا کر اسے لڈو نما بنا کر مرے ہوئے انسان کے نام پر پوجا پاٹھ کرتے ہیں۔ وقت حال برباد ہو جاتا ہے، ماضی کی آبا و اجداد گر جاتے ہیں اور مستقبل والے بھی گریں گے۔ اتنا ہی نہیں،
دوشیریتیہ کلگھنانام ورنسنکرکارکیہ اتسادیانتے جاتی دھرماہ کلدھرماشچ شاشوتا۔
دوغلا پیدا کرنے والے ان عیوب سے خاندان اور خاندان کو برباد کرنے والوں کے ابدی خاندانی فرض اور قومی فرض ختم ہو جاتے ہیں۔ ارجن مانتا تھا کہ خاندانی فرض ابدی ہے، خاندانی فرض ہی دائمی ہے، لیکن شری کرشن نے اس کی تردید کی اور آگے بتایا کہ روح ہی ابدی اور دائمی دین ہے۔ حقیقی ابدی دین کو جاننے سے پہلے انسان دین کے نام پر کسی نہ کسی قدامت کو جانتا ہے، ٹھیک اس طرح ارجن بھی جانتا ہے، جو شری کرشن کے الفاظ میں ایک قدامت ہے۔
اتسن کل دھرمان منشیانام جناردن نرکے نیتم واسو بھوتیتینشوشرم۔
اے جناردن، ختم ہوئے خاندانی فرض والے انسانوں کو لامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا پڑتا ہے، ایسا ہم نے سنا ہے۔ صرف خاندانی فرض ہی برباد نہیں ہوتا، بلکہ دائمی ابدی دین بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جب دین ہی برباد ہو گیا تو ایسے انسان کا لامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا ہوتا ہے، ایسا ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، سنا ہے۔
اہو بت مہت پاپم کرتم ویوسیتا ویم یدراج سکھ لوبین ہنتم سوجن مدیتا۔
حیف، افسوس ہے کہ ہم لوگ عقل مند ہو کر بھی بہت بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، اقتدار اور عیش کی لالچ سے اپنے خاندان کو مارنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ ابھی ارجن اپنے کو کمتر نہیں سمجھتا ہے، شروع میں ہر ریاضت کش اسی طرح بولتا ہے۔ مرد خدا مہاتما بدھ کا قول ہے کہ انسان جب ادھورا علم رکھتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، اور جب آدھے سے آگے کا علم حاصل کرنے لگتا ہے تو اپنے کو بہت بڑا بیوقوف سمجھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ارجن بھی اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتا ہے۔ وہ شری کرشن کو سمجھاتا ہے کہ اس گناہ سے اعلی افادہ ہو، ایسی بات بھی نہیں۔ صرف اقتدار اور عیش عشرت کی لالچ میں پڑ کر ہم لوگ خاندان کو تباہ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ ہم ہی بھول کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، آپ بھی بھول کر رہے ہیں۔ ایک دھکا شری کرشن کو بھی دیا۔ آخر میں ارجن اپنا فیصلہ دیتا ہے۔
یدی مام پرتیکارم اشسترم شسترپانیہ धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
अगर मुझ गैर मुसल्लह मुकाबला ना करने वाले को मुसल्लह धृतराष्ट्र के औलाद मैदान जंग में मारें तो उनका वो मारना भी मेरे लिए बेहद फायदेमंद होगा। तवारीख तो कहेगी कि अर्जुन समझदार था जिसने अपनी कुर्बानी देकर जंग को बचा लिया। लोग जानों की कुर्बानी दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे खुशहाल रहें, खानदान तो बचा रहे। इंसान गैर मुल्क को चला जाए, शान और शौकत से भरे महल में रहे, लेकिन दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोंपड़ी याद आने लगती है। फरिश्तगी इतनी पुरजोर होती है। इस वास्ते अर्जुन कहता है कि मुसलह धृतराष्ट्र की औलाद मुझ जैसे इंतकाम ना लेने वाले को मैदान जंग में मार दें तब भी वो मेरे लिए बेहद फायदेमंद होगा, ताकि औलाद तो ऐशो आराम से रहें। संजय उवाच।
एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।
संजय बोला कि मैदाने जंग में गम से बेकरार मन वाला अर्जुन इस तरह कहकर तीरों कमान को छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, यानी मैदान और मैदान के आलिम की टक्कर में हिस्सा लेने से पीछे हट गया। मगज़े सुखन निष्कर्ष। गीता मैदान और मैदान के आलिम के जंग की मंजरकशी है। ये खुदाई शौकतों से मुजयन दीदार इलाही को अता करने वाला नगमा है। यह नगमा सराई जिस हलके में होती है वो मैदान अमल जिस्म है, जिसमें दो खसाइल हैं, मैदान दीन और मैदान अमल। इन फौजों की शक्ल और उनकी ताकत की बुनियाद बताई, आवाज नाकूस से उनकी जफाकशी का इल्म हुआ। उसके बाद जिस फौज से जंग करनी है उसका मुआयना हुआ, जिसकी तादाद 18 औक्षेहिनी तकरीबन 6.5 अरब कही जाती है, लेकिन दर हकीकत वो बेशुमार हैं। कुदरत के नजरियात दो हैं, एक माबूद की तरफ ले जाने वाली खसलत रूहानी दौलत, दूसरी दुनिया की तरफ ले जाने वाली दुनियावी खसलत दुनियावी दौलत। दोनों खसाइल ही हैं, एक जाते मुतलक की तरफ माइल करती है, आला दीन जाते मुतलक की तरफ ले जाती है, और दूसरी दुनिया में यकीन दिलाती है। पहले रूहानी दौलत को संभाल कर दुनियावी दौलत का खात्मा किया जाता है, फिर दायमी अबदी इलाह के दीदार और उसमें मकाम के साथ रूहानी दौलत की जरूरत खत्म हो जाती है। जंग का अंजाम निकल आता है। अर्जुन को फौज के मुआयने में अपना खानदान ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है। जहां तक ताल्लुक है उतनी ही दुनिया है। उनसियत के पहले कदम पर खानदानी फरीफ्तगी खलल पैदा करती है। रियाजत कश जब देखता है कि करीबी ताल्लुकात से इतना लगाव हो जाएगा जैसे वो थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। अपनों से लगाव को खत्म करने में उसे नुकसान दिखाई देने लगता है। वो मुरव्विजा कदामतों में अपनी हिफाजत की तलाश करने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, खानदानी फर्ज ही अबदी दीन है। इस जंग से अबदी दीन फना हो जाएगा, खानदान की औरतें नाखिस होंगी, दोगला पैदा होगा जो खानदान तबाह करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए दोजख में ले जाने के लिए होता है। अर्जुन अपनी समझ से अबदी दीन की हिफाजत के लिए बेकरार है। उसने श्री कृष्ण से गुजारिश की हम लोग समझदार होकर भी इतना बड़ा गुनाह क्यों करें? यानी श्री कृष्ण भी गुनाह करने जा रहे हैं। आखिर में गुनाह से बचने के लिए मैं जंग नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ मायूस अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। मैदान और मैदान आलिम की टक्कर से पीछे हट गया। शराह नवीसों ने इस बाप को गमे अर्जुन जोक कहा है। अर्जुन उनसियत की अलामत है। अबदी दीन के लिए बेकरार होने वाले आशिक का गम जोक का सबब बनता है। यही गम मौर्य से अव्वल मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगति बिनु। शक व शुभे में पड़कर ही इंसान गम करता है। उसे शक था कि दोगला पैदा होगा जो दोजख में ले जाएगा। अबदे दीन के मिटने का भी उसे गम था। लिहाजा गम व शक व शुभा जोग का आम तरीके से नाम दिया जाना इस बात के लिए मुनासिब है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की शक्ल में उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ वो इल्म रियाजत से मुताल्लिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में गम वो शक व शुभा जोग नाम का पहला बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गरानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्य संशय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गरानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में गम व शक व शुभा जोग संशय विषाद योग नाम का पहला बाब मुकम्मल हुआ।